أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال المعصوم عليه السلام نعمتان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما. ارشاد معصوم ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں تو اس وقت انسان کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. پہلی نعمت جس کے جانے کے بعد انسان کو اس کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے وہ جوانی ہے, اور دوسری نعمت کہ جب انسان اس دور سے گزر جاتا ہے اور وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے تو اس وقت اس کو اندازہ ہوتا ہے, وہ ہے صحت و سلامتی. اور یہ ان دونوں نعمتوں کو رسول اللہ نے حضرت ابو ذر کے نام, جو آپ کی ایک نصیحت ہے کہ ابو ذر پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, قدر و قیمت ان کے حاصل کرو. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے. اس بنا پر انسان کا دور جوانی در حقیقت انسان کا پرائم ٹائم ہے, ایک قیمتی حصہ ہے. اگر میں کہوں کہ خلاصہ زندگی اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ اس کی جوانی کا دور ہے, اور اس جوانی ہی میں انسان اپنے آئندہ زمانے یا مستقبل اور فیوچر کے لیے پلاننگ کرتا ہے, روحانی اور مادی طور پر بھی اور معنوی یا مادی طور پر. جو کچھ بھی انسان منصوبہ بندی کرے گا وہ آئندہ زمانے میں بہتر سے بہتر استفادہ کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی دوران جوانی میں اپنے مستقبل کے لیے اپنے فیوچر کے لیے آمادہ نہ ہو تو وہ مستقبل میں جا کے بھی کچھ نہیں کر سکتا. ایک بحث ہے مستقبل کی تاریخ, مستقبل کی تاریخ کیسے لکھی جائے گی. ایک حال کی تاریخ ہے اور ایک مستقبل کی تاریخ ہے. آج جو ہم اپنے ماضی کی تاریخ پڑھ رہے ہیں, ہسٹری پڑھ رہے ہیں, یہ ہسٹری کس نے لکھی ہے؟ آپ سب کہیں گے یہ ہسٹری فلاں مصنف نے لکھی ہے, فلاں مورخ نے لکھی ہے, فلاں تاریخ دان نے لکھی ہے. نہیں, یہ غلط ہے. 1947 کی ہسٹری, 1857 کی جنگ آزادی کی ہسٹری مورخ نے نہیں لکھی, تاریخ دان نے نہیں لکھی. یہ ہسٹری 1947 کے لوگوں نے اپنے عمل سے لکھی تھی. 1857 کی جنگ آزادی کی ہسٹری در حقیقت کس نے لکھی تھی؟ 1857 کے لوگوں نے اپنے عمل سے لکھی تھی. فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے لکھی تھی, اس کو تدوین اب کیا گیا ہے, اس کو مدون اب کیا گیا ہے, اس کو کمپائل اب کیا گیا. وہ تاریخ لکھ رہے تھے وہ جب وہ عمل کر رہے تھے. ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے مستقبل کی تاریخ لکھ رہے ہیں. ہم بھی اپنے حال کی تاریخ لکھ رہے ہیں جو مستقبل میں فیوچر میں پڑھی جائے گی. اگر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہم اپنی تاریخ خود لکھ رہے ہیں تو قوموں کی زندگی سنور جائے گی, بدل جائے گی. قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں, اشخاص وہی کامیاب ہوتے ہیں, لوگ وہی حقیقتاً کامیابی مقدر بنتی ہے ان کا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ان کی تاریخ ہے جو مستقبل میں کمپائل کی جائے گی. اگر یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ دنیاوی طور پر بھی ہے اور اخروی اور معنوی طور پہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں یہ ہمارے آخرت کو ہمارے لیے ضمانت کے طور پر محفوظ کر رہا ہے اگر ہمیں اندازہ ہو جائے. درود بھیجیے محمد والے محمد. اس بنا پر اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے آپ کو ابھی سے سٹرگل کرنی ہوگی, بلکہ یوں کہوں کہ آپ ابھی سے اپنے فیوچر کو بنا رہے ہیں. آپ کا ہر لمحہ جو آپ کے فیوچر کو بنا رہا ہے, یہ دینی طور پر اور اخروی طور پر بھی ہے اور مادی طور پہ بھی ہے. اس بنا پر یہ تمام افراد جو یہاں بیٹھے ہیں بشمول میرے, اگر ہم اس بات کا باور کر لیں, इस बात का यकीन कर लें कि हम अपने मुस्तकबिल की तारीख़ अपने हाथों से लिख रहे हैं। हमारा अमल, हमारा इज्तिमाई किरदार, हमारा सोशल बिहेवियर हमारे उस तारीख़ को लिख रहा है। कंपाइल बाद में की जाएगी, वो अलग बहस है, लेकिन ये लिखना जो है, इसका बावर अगर किसी को हो जाए, यकीन अगर हो जाए, तो कौमों की ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। दौरान जवानी भी इंसानी ज़िंदगी के उन दौर से ताल्लुक़ रखता है कि जिसमें एक जवान अपने मुस्तकबल को अपने अमल से लिख रहा होता है। यही वो ज़माना है कि जिसको इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि अगर तुमने अभी अपनी इस्लाह नहीं की तो बड़े होकर भी तुम अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। शायर ने बड़ा एक खूबसूरत शेर कहा है कि अभी जो लगाया गया है दरख्त, वो एक आदमी से उखड़ जाएगा, मगर कुछ ज़माना गुज़र जो गया, बहुत सों से मिलकर ना हिल पाएगा। अभी बुराई का नन्ना सा पौधा है, वो एक तौबा से, एक आह से, एक आंसू से, एक गिरिए से, एक पशेमानी से, एक निदामत से उखड़ सकता है जो शैतान ने बीज बोया है। लेकिन अगर गुनाह करते रहे और उसको पानी देते रहे, इसकी जड़ें ज़मीन में फैलती रहेंगी, फिर ये तनावर दरख्त बन जाएगा और फिर उसको हिलाना, जुलाना, काटना बहुत मुश्किल होगा। इस बना पर मोहम्मद कहते हैं, अगर इस्लाह करनी है तो दौरान जवानी से करो कि जब तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारा दिल नूरानी है, तुम्हारी रूह पाक है, सलाहियत है, वलवला है, जोश है, खुदा से मोहब्बत करने की तड़प और आरज़ू और लगन है। लेकिन अगर ये ज़माना गुजर गया और फिर गुनाह पे गुनाह तहबत है, जमते रहेंगे और फिर क्या होगा कि इंसान जो है अपनी इस्लाह नहीं कर सकेगा। एक आईने को तस्वीर कीजिए, उसको एक रेगिस्तान में रख दीजिए, मिट्टी की तहें उस पर जमती रहें लेकिन उसको साफ़ ना किया जाए, तो मिट्टी की तहें जमती रहेंगी, यहाँ तक कि उसका साफ़ करना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप उसको साफ़ भी करेंगे तो उसकी जो शफाफियत थी, जो उसकी चमक थी, जो उसकी खसूसियत थी कि वो मुनक़िस करता था, वो सलाहियत खो देगा। इंसान के साथ भी बेईमानी यही होता है। इस बिना पर यह दौरान जवानी बहुत हसास दौर है, प्राइम टाइम जिसको मैंने कहा, और इसको रिवायात में कहा गया है कि ये इंसान की ज़िंदगी की बहार का ज़माना है। बहार जब आती है तो हर किस्म की खूबसूरती, रानाई, रंगीनी, सब्ज़ा, हरियाली, ये सब अपने उरूज पे होती है। जो कुछ भी अल्लाह के पास खूबसूरती थी, ताकत थी, तवानाई थी, वो सब अल्लाह ने एक जवान में रखी है। ये उसका काम है कि वो उसको किस तरह इस्तेमाल करता है। एक बात ये हो, दूसरी बात ये हो गई कि अपने फ्यूचर के साथ साथ जो चीज़ इंसान को इस दौरान जवानी में तवज्जो करनी चाहिए, वो ये है कि उसकी फिक्री और इंसानी शख्सियत दर हकीकत बन रही है। यानी इसी दौरान में, इसी टाइम पीरियड में इंसान अपनी शख्सियत को बनाता है, इल्मी लिहाज से हो, अखलाकी लिहाज से हो, सियासी लिहाज से हो, बिजनेस के लिहाज से हो, किसी भी जहत से आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपकी शख्सियत बन रही है। इसका मतलब ये कि बहुत ही हसास ज़माना है कि जिसमें आपने बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। इस दौरान जवानी में कल भी आईएसओ के दोस्तों के साथ एक नशिस्त थी पिंडी में, वहाँ पर भी मैंने कुछ सिफात को तस्करा किया था, चूँकि वो रिकॉर्ड हो चुकी है, वो बाद में इंटरनेट पे आ जाएगी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कुछ कॉमन चीज़ें थी वो मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, और जो वहाँ जिक्र नहीं की थी वो यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। एक और सिफत जो इस दौरान जवानी में होती है वो दरख्शंदगी है, वो आपकी सिफात का जलवागर होना है। यही आप देखते हैं कि अक्सर नौजवानों में जो है वो बैठे बैठे जो है ना वो शर्त लग जाती है। अब वो शर्त लगना एक अलग मसला है, मैं उसके सही या गलत होने पर बहस नहीं कर रहा हूँ। शर्त लग जाती है, जनाब तुम 5 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पी के दिखाओ, 2 किलो गुलाब जामुन खा के दिखाओ, 20 अंडे खा के दिखाओ, मिसाल के तौर पे होता है, लग जाती है। वो एक स्पिरिट, एक वलवला, एक लगन होती है, जनाब करना है। ये जो ये एक एक चीज़ मैंने बताई, ये जो स्पिरिट अल्लाह ताला ने रखी है, जो उमंग रखी है अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े हदफ को हासिल करने के लिए, अगर स्पिरिट को, वलवले को, लगन को ले लिया जाए तो जवान में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा जवान में। बिल्कुल नाकारा हो जाएगा। अगर उम्मीद, अगर आरजू, अगर तड़प, अगर उमंगें एक नौजवान से निकाल ली जाएं तो वो बिल्कुल ही निकम्मा, कि जो आप अक्सर आपको सोशल मीडिया पे तस्वीरें नज़र आती हैं ना, नौजवान सर झुकाए बैठा हुआ है, इश्क में नाकाम हो गया, ठीक है, और जो है मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे दोस्त की ज़रूरत है, मुझे निकालो, मुझे अकेला रहने दो, मैं तन्हाइयों का मुसाफिर हूँ, और ये हूँ और वो हूँ, इस किस्म की चीज़ें, ठीक है ना, मुझे ज़िंदगी से प्यार नहीं रहा, मुझे मर जाने दो, और जो है तस्वीर लगी होती हैं कि अपनी कलाई को काट दिया, खून बह रहा है, दिल निकाल लिया यहाँ से, इस तरह की चीज़ें, खूब कुछ नहीं बचेगा। फिर दरख्शंदगी है, यानी अल्लाह ताला ने जलवागर होने की सलाहियत दी इन सिफात को, एक चीज। दूसरी चीज ये कि एक्सपोज करने की सलाहियत होती है नौजवानों में, उन्हें पहचाना जाए, उन्हें जाना जाए, उनकी सलाहियतों का लोहा माना जाए, उनके वजूद को तस्लीम किया जाए, ये भी नौजवान में सलाहियत होती है। वो चाहता है मुझे देखा जाए, मुझे अहमियत दी जाए, मुझे इम्पोर्टेंस दी जाए। अब जो दर हकीकत यूँ कहूँ कि सही तरीके से अपनी सलाहियतों का लोहा नहीं मनवाता, वो फिर गैर अखलाकी हरकतें करके, ऊंची नीची हरकतें करके, लफंगाना हरकतें करके, गैर महज़ब तरीक़ों से जो है ना दूसरों की तवज्जो को अपनी जानिब मबजूल कराना चाह रहा होता है। ये भी मुतवज्जे कराना है, लेकिन दर हकीकत नौजवान की जो अच्छी सिफत है वो ये है कि वो अपने चाहता है मुझे अहमियत दी जाए। इसीलिए कहा कि बच्चा 21 साल का हो जाए, पहले 7 साल तक तुम्हारा बादशाह है, दूसरे 7 साल तक, 14 साल तक तुम्हारा गुलाम है, दूसरे 7 साल तक क्या है, तुम्हारा गुलाम है, और तीसरे 7 साल तुम्हारा मुशीर है। मुशीर यानी जिससे मशवरा, एडवाइज़र, जिससे मशवरा लिया जाता है, यानी उसको अहमियत दो, ये इस्लाम का हुक्म है कि उसको अहमियत दो, उसको इम्पोर्टेंस दो, उसके वजूद को तस्लीम करो, उसकी क्रिएटिविटी को मानो, उसकी तख्लीकी सलाहियतों को मानो, उसकी स्किल्स को मानो। इसीलिए है तो इस्तेदाद, इंसान चाहता है कि उसकी इस्तेदाद, सलाहित, स्किल्स को माना जाए, एक्सपोज किया जाए, वो एक्सपोज करना चाहता है, दिखाना चाहता है अपने आप को, मैं हूँ, मेरा वजूद है, मेरी फिक्र है। यही देखते हैं कि अक्सर यानी वो घराने के जिनमें 18 20 साल 22 साल के बच्चे होते हैं, उनमें अक्सर जो है वो इस कस्म के तनाज़ात होते हैं, इस कस्म की नोकझोंकें होती हैं कि एक भाई कुछ कह रहा होता है, दूसरा भाई कुछ और कह रहा होता है, बिल्कुल 90 डिग्री अपोजिट, बात 180 डिग्री, या इस तरीके से हमें मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं कि वो कहता है मुझे एक्सपोज किए, मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। इसी चीज़ में यानी इन्हीं सिफात में से एक सिफत है इंसान की हिस्से ज़ेबाई, इंसान खूबसूरती को पसंद करता है, इन अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है, खूबसूरती को पसंद करता है, तो वो ये कहता है कि मेरे बंदे भी खूबसूरत रहें। कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लती अखरज लिबादे, कह दो कि वो ज़ीनत जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए करार दी हैं, हलाल की हैं, उनको क्यों हराम करते हो। तो हिस्से ज़ेबाई जो है नौजवान में वो क्या है, वो ये है कि इंसान, हिस्से ज़ेबाई क्या है, इंसान दर हकीकत अपनी खूबसूरती का इजहार करना चाहता है। ये कोई फी नफ्स ही फी ज़ात ही कोई बुरी चीज़ नहीं है। एक नौजवान चाहता है उसके बाल अच्छे हों, इस्लाम का हुक्म भी है कि बाल रखने हैं तो अच्छी तरीके से इंसानों की तरह रखो, वरना टेंट करा लो, मुंडवा दो। लेकिन आजकल क्या हो गया है, जिसके बाल जितने फटे हुए होंगे, बम फटा हुआ होगा, वो फैशनेबल समझे जाता है, ठीक है ना, उलझे जितने जितने बाल उलझे हुए होंगे वो बहुत मॉडर्न समझा जाएगा, है या नहीं है, ठीक है ना, जितने बाल बाल बिगड़े हुए हैं कहीं जाना बहुत ही महजब है। खैर, इस्लाम आराइश को पसंद करता है, फी नफ्स से ही आराइश करने में, अच्छा लिबास पहनने में कोई इश्काल नहीं है, कोई इश्काल शरी मौजूद नहीं, कोई कबाहत नहीं है, इस्लाम की तरफ पहनो, लेकिन इससे अखलाकी फसाद और गुमराही को जन्म न दो। ये ना करो कि मैं निकलूं और मुझे मिसाल के तौर पर कोई नामहरम देखे, या नामहरम कोई औरत निकले कि मुझे कोई मर्द देखे। इस्लाम ने तबर्रुज को मना किया है, वला तबर्रुज न तबर्रुज अल जाहिलिया। अज़वाज नबी के लिए जो आयात नाजिल हुई हैं उन आयात में से एक आयत का हिस्सा ये है कि तबर्रुज, तबर्रुज यानी खुद नुमाई, बुर्ज, बुर्ज कहते हैं एक टावर को दूर से नज़र आ जाता है, ठीक, दूर से इस्लामाबाद में कोई बहुत बड़ी इमारत जो दूर से नज़र आ जाए, तबर्रुज है, खुद नुमाई, खुद को नुमाया कर रही है, अपने वजूद को दिखा रही है। इस्लाम तबर्रुज को मना करता है, खुद नुमाई को मना करता है, अच्छे कपड़े पहनने को, अच्छा लिबास इख्तियार करने को, खुशबू लगाने को इस्लाम ने मना नहीं किया। हिस्से ज़ेबाई को इस्लाम पसंद करता है, हर चीज़ में हिस्से ज़ेबाई है। ये ज़ेबाई सिर्फ गोरे रंग में नहीं है, ये हिस्से ज़ेबाई हर काम की नौइयत के साथ है। कभी जूतों को साथ मिला के रखने में हिस्से ज़ेबाई नज़र आती है, कभी बालों को मुरतब करने में हिस्से ज़ेबाई नज़र आ सकती है, कभी साफ सुथरा लिबास पहनने में हिस्से ज़ेबाई नज़र आ सकती है, कभी एक छोटे से छिलके को कूड़ेदान में फेंक कर इंसान को हिस्से ज़ेबाई नज़र आ सकती है, कभी खूबसूरत आवाज़ में इंसान को हिस्से ज़ेबाई नज़र आ सकती है। यही वजह है अज़ान के लिए मुस्तहब है कि जो अज़ान दे रहा है मौज़िन उसकी सदा अच्छी होनी चाहिए, अच्छी लहन के साथ दे। एक ईसाई लड़की थी, वो मुसलमान हो गई, उसके बाप ने जो पादरी था उसने बहुत मना किया उसको कि ना जाओ ना जाओ इस्लाम की, लेकिन मैं इस्लाम को कबूल करूँगी। कहते हैं कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया या उसका मेल और रुझान इस्लाम की तरफ हो गया। कहते हैं कि एक मस्जिद से जो है ना वो किसी ने अज़ान दी, अज़ान दी तो लड़की ने पूछा ये कैसी अज़ान है, करख्त आवाज़, अनकरर आवाज़, कहा है ना सबसे ज़्यादा बदतरीन आवाज़ गधे की आवाज़ कहा गया है। हज़रत लुक़मान ने जो नसीहत की गधे की तरह आवाज़ फाड़ के बच्ची को, अनकरर आवाज़, बदतरीन मनफूर तरीन आवाज़ गधे की आवाज़ है। वो बेचारे को अल्लाह वाले थे, उन्होंने अज़ान दी, लड़की ने पूछा ही सही ये क्या है, कहेंगे ये मुसलमानों की इबादत के लिए बुलाया जा रहा है। कहेंगे इतनी बुरी आवाज़ है, जब सदा देने वाला और तरीक़ा इतना बुरा है तो इबादत कितनी बुरी होगी। और वो मुनहरिफ हो गई, ये पादरी खुश हो गया, ये मिठाई लेके गया मस्जिद में आया तो लोग परेशान हो गए, पादरी साहब आए खैरियत है, मिठाई के टोकरे लेके, कहा कि ये बताइए कि अज़ान किसने दी है। तो नहीं मैंने दी है। कहेंगे बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका बहुत मरहून मिन्नत हूँ, आपकी खुशुलहानी की वजह से, आपकी अच्छी सुरीली आवाज़ की वजह से मेरी बेटी जो है दोबारा मसीहत की तरफ लौट आई है। इस्लाम कहता है कि हिस्से ज़ीबाई, इसीलिए अच्छी आवाज़ अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। नौखानी हो, मनकबत खानी हो, इबादत हो, तलावत दुआ कुरान हो, ये सब अच्छी नेमतों में से है। तो हिस्से ज़ीबाई मौजूद है इंसान में, खुश लिबासी, खुश कयाफा होना कि लोग मुझे देखें, लेकिन इसमें नियत ये होनी चाहिए कि इंसान गुनाह के लिए ये सब न करे। खूब इतना काफ़ी है, यानी हर इंसान और हर जवान खुसूसन इस बात से खुश होता है कि उसको देखा जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, भाई बाल बहुत अच्छे हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहने, जूते कहाँ से ख़रीदे, वगैरह वगैरह। लेकिन ये फसाद अखलाकी, इब्तिज़ाल अखलाकी के लिए नहीं होना चाहिए। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक और चीज़ जो जवानों को बावर करनी चाहिए वो ये है कि जवान माशरे की दिल की धड़कन होता है। जवान से हमारा लड़के नहीं हैं सिर्फ, उसमें लड़कियां भी शामिल हैं, जो भी जवान है मुज़क्कर हो या मुअन्नस, माशरे की दिल की धड़कन होता है। माशरे में की जाने वाली तमाम तलाश, सही कोशिश, जद्दोजहद का महवर होता है, और माशरे में जितना भी तहर्रुक और बेदारी है, इर्तिका है, उस सब का महवर जवान बन सकता है। इन्हीं फी नफ्से ही होता है, यानी उसमें ये सलाहियत होती है कि वो ये काम कर सके, मुमकिन है ना कर सके। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट जो मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, हम कहेंगे आप बिलकुवा डॉक्टर हैं, बिलफेल डॉक्टर नहीं, यानी आप में डॉक्टर बनने की सलाहियत मौजूद है, आप अभी डॉक्टर बने नहीं हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हम कहते हैं आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आ गए, आप में इंजीनियर बनने की सलाहियत है, लेकिन ये अभी मरहले ज़ुहूर तक नहीं पहुँची है। एक क्रिकेट एकेडमी में दाखिला लेता है, आप में बेहतरीन क्रिकेटर बनने की सलाहियत है, आप बने नहीं हैं। आपका काम ये कि उन स्किल्स को परवान चढ़ाएं। लिहाजा एक जवान माशरे के दिल की धड़कन बन सकता है। जितनी भी एफर्ट्स हो रही हैं, जितनी भी कोशिश एक्टिविटीज हैं, उन सब का महवर माशरे के तहरुक और बेदारी और इरतका का महवर जवान हो सकता है। अगर ये जवान हमारे इस चीज़ को पालें, हासिल कर लें, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए इमाम खामने फरमाते हैं, मैं नौजवानों से तीन चीज़ें चाहता हूँ, तहसील इल्म, तहजीब नफ्स और तीसरी चीज़ वर्जिश। तहसील इल्म, तहजीब नफ्स यानी गुनाहों से अपने आप को बचाना, और तीसरी चीज़ क्या है? वर्जिश, जो माशाल्लाह हम सब करते हैं। ठीक है, वो एक साहब को बड़े वर्जिश का जोश चढ़ा, तो जो है वो देखा कि जो ना सुबह जब उनकी वालदा आई तो देखा जो है कोई बदरू टाइप की चीज़ जो है वो ब्लैंकेट के नीचे से हरकत कर रही है, तो डर गई। वालिद को बुलाया, उनके वालिद जब वो ब्लैंकेट उठाए तो देखा साहबजादे जो हैं वो लेटे लेटे जो है वर्जिश कर रहे थे ब्लैंकेट के नीचे। ये भी एक वर्जिश होती है। वो एक कल हमारे दोस्त बता रहे थे कि इंसान कल जब हम छोटे थे तो सहरी खा के जने लेट जाते थे तो और कहते थे हिलना नहीं, ये इसको बचा के रखना है, ये रात तक जो है काम आएगा। शाह जी हिलना नहीं है हो, ये भी एक किस्म की वर्जिश होती है कि जना मिलना नहीं है। वर्जिश, चाको चौबंद रहना, होशियार रहना, हशाश बशाश रहना। रसूलुल्लाह एक मदीने की गलियों से गुजर रहे थे, दुरूद भेजे हैं मोहम्मद वाले तो देखे एक नौजवान बैठा है फारिग सा, कोई काम काज नहीं है। तो अपनी ज़बान में मैं बयान कर रहा हूँ उस वाक़े को, पर खुदार क्या मसला है, क्यों बैठे हो? शादी की है? नहीं या रसूल, शादी नहीं की। शादी कहाँ? कोई काम काज है? कोई जॉब नहीं, जॉबलेस हूँ, बेकार बिल्कुल। तो रसूल ने एक जुमला फरमाया, बड़ा प्यारा जुमला है, इन अल्लाह ला युहिब्बु अश्शाबल फारिग, अल्लाह ताला बेकार नौजवान को पसंद नहीं करता। ये क्या, इसको हिम्मत दिलाई, हौसला दिया, जिहद दी, काम करो, मेहनत करो। यही वजह है, एक सहाबी रसूलुल्लाह के पास आया, बद्दू था, तंगदस्त था, परेशान था, रसूलुल्लाह की खिदमत पहुंचा, चाहता था कि अपनी परेशानी का इजहार, रसूलुल्लाह ने कहा जो तंगदस्ती का इजहार करेगा वो कामयाब नहीं होगा, वो कोशिश करे, जद्दोजहद करे। इसको शर्म महसूस ही चला गया, अगले दिन फिर आया, फिर रसूलुल्लाह यही हदीस बयान कर रहे थे, इस किस्म की कोई बात करते, फिर चला गया। बिलाखिर तीसरे चौथे दिन इसने वहीं से मुसम्मम इरादा किया और जाके जो है कुछ पैसा कर्ज लिया, वहाँ से कुल्हाड़ी ली, कुल्हाड़ी लेके इसने जंगल से लकड़ी काटी, उनको बेचा और ये कह के अपना काम शुरू किया, और फिर करते करते वो एक साहिब हैसियत शख्स बन गया। इस बिना पर यानी तहसील इल्म, तहजीब नफ्स और वर्जिश। दूसरी एक तीन सिफात और मैं बयान करूंगा जो मैंने कल भी बयान की थी, लेकिन वो जो है मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सका था। तीन और खसूसियत जवान में होती हैं। एक थी कि एहसास ज़िम्मेदारी होनी चाहिए उसमें, और होती है, फील करता है, महसूस करता है वो। दूसरी कि ईमान के साए में हरकत, ये ईमान दुनियावी माना में भी और दीनी माना में भी। दुनियावी माना में वही ईमान अल्लाह पर, रसूल पर, गैब पर, किताबों पर, आइमा पर ईमान लाना, और दुनियावी माना में ईमान यानी अपनी सलाहियतों का यकीन और एतमाद करना, उन पर एतमाद करना, उनका यकीन करना, ईमान। बस एक बेहतरीन नौजवान हो जो एहसास ज़िम्मेदारी करता है कि मुझे ये करना, कोई करे या ना करे मुझे ये काम करना है। बाज़ औक़ात ऐसा मसूल, ऐसा ज़िम्मेदार शख्स बाज़ औक़ात दूसरों के कामों को भी पूरा कर रहा होता है अपने कामों को अंजाम देने के बाद। हरकत के साए में ईमान, हरकत ईमान के साए में हरकत करना, और तीसरी सिफत है बसीरत और आगाही, शऊर। इंशाल्लाह जब बात आगे आगे बढ़ेगी तो मैं उसको बयान करूँगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी एहसास ज़िम्मेदारी करे पढ़ाई के लिए, मुस्तकबिल के लिए, तशय्यो के लिए, मकतब के लिए, और ईमान के साहे में इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वयुसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह तो अल्लाह के दिन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को मजबूत करेगा। ये अल्लाह का वादा है। यानी ईमान हो अगर इंसान का खुदाई वादों पर कि मैं खुदा के लिए निकल रहा हूँ। अक्सर नौजवान बच्चे मसलन आते हैं तो मैं उनसे थोड़े से हंसी मजाक करता हूँ, कहता हूँ कि जो भी अल्लाह के लिए काम करेगा अल्लाह ताला उसको उसके ससुर तक पहुँचाएगा, सीधा ससुराल पहुँचेगा वो। अब मुझे नहीं पता कि आपकी हंसी के पीछे क्या राज है। कहेंगे दलील क्या है, मैंने कहा दलील हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है। बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल करके जब भागे हैं, वहाँ से फरार किया है, तो क्या हुआ, सीधे अपने ससुर मोहतरम के पास पहुँचे। अल्लाह नौजवानों की एफर्ट्स को ज़ाया नहीं करता। आप अल्लाह के लिए काम करें, इंशाल्लाह ससुर मोहतरम आपके इस्तकबाल के लिए होंगे। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस बिना पर जिम्मेदारी, ईमान, यानी अपनी सलाहियतों का यकीन होना चाहिए कि आप क्या हैं। इसीलिए कहा गया रहमल्लाहु इम्रान मन कदरा मन अरफा कदरा, कि खुदा उस शख्स पर रहमत नाजिल करे कि जो अपनी कदर कीमत को जानता है। वो चंद किलो का है, कितने किलो का है, उसका वज़न कितना है, उसके आइज़ का कलर क्या है, उसके बालों का कलर क्या है, उसकी डेट ऑफ पैदाइश क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, ये पहचानना नहीं है, अपनी सलाहियतों को पहचानना। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपनी सलाहियतों को पहचान पाते हैं, फिर उनमें से भी जो पहचान लेते हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपनी सलाहियतों को पहचानते हैं कि वो क्या उनमें मौजूद है, फिर उनमें से भी कुछ अफराद होते हैं कि जो उनको परवान चढ़ाते हैं, वो उनको परवान चढ़ाते हैं, यानी और फिर उन परवान चढ़ाने वालों में से भी कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं, और उन इस्तेमाल करने वालों में से भी कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जो सही जेहत में उन्हें इस्तेमाल करते हैं। अक्सरियत को तो इल्म ही नहीं होता कि वो क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं। अगर इल्म हो भी जाए परवान नहीं चढ़ा पाते, परवान चढ़ा भी लेते हैं इस्तेमाल नहीं कर पाते, इस्तेमाल करते भी हैं तो सही सिमत में इस्तेमाल नहीं करते। जब तक जिहत का ना पता हो, इंसान जितनी भी एफर्ट करेगा वो बेकार, ला हासिल, बेनतीजा होंगी। इस बिना पर ये एहसास ज़िम्मेदारी, ये ईमान के साए में अपनी कामों को अंजाम देना, अपने सफ़र को जारी रखना, और तीसरी चीज़ बसीरत आ गई जिसको मैं बाद में जिक्र करूँगा। एक और चीज़ जो नौजवानों के लिए जिसकी तवज्जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि नौजवानों में एक बीमारी है जिसका नाम है ला ताल्लुकी, ला उबारीपन। मुझे क्या, मुझसे क्या लेना देना, मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है, बाग में एक फूल लगा देने दे बाहर थोड़ी आ जाती है। इस किस्म की जो बातें होती हैं नौजवानों में, मैं अगर कह भी दूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है। सियाहरात में एक मोमबत्ती जलाने से उजाला नहीं होता, इसी किस्म की दसियों बातें। इल्ला उबालीपन, ला ताल्लुकी, ये बदतरीन सिफत है नौजवानों में, जहर कातिल की तरह, जो उनकी सलाहियतों को नाकारा बना देती है। उनका एतमाद उड़ जाता है अपनी सलाहियतों से, उनका ईमान उड़ जाता है, उनका यकीन ख़त्म हो जाता है। जब इंसान ये कहता है जनाब मुझे क्या और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो है, मैं हूँ, मुझे अपनी कब्र में जाना है, उसको अपनी कब्र में जाना है, ये बदतरीन सिफत है नौजवानों की। लिहाजा अपने आप को, अपनी दुनिया को, अपने स्किल्स को, अपनी सलाहियतों को ला ताल्लुक मत होने दें, हर जगह भी नहीं, हर जगह ताल्लुक बनाना नहीं, सही जगह अपने ताल्लुक को कायम करना ये ज़रूरी है। कि वो सही जगह क्या है ये आपको कौन बताएगा? ये वही बताएगी, ये कुरान बताएगा, ये रसूल बताएगा, ये अहले बैत बताएंगे। एक और चीज़ कि जो अक्सर नौजवानों में देखने में आई है वो ये है कि माजी की मायूसी का खौफ उन पर इतना ज़्यादा छा जाता है कि मुस्तकबिल की जानिब कदम बढ़ाने की तौफीक सलब हो जाती है। माजी की शिकस्त से पैदा होने वाली ना उम्मीदी मुस्तकबिल की जानिब उनकी रफ्तार को धीमा करने का सबब बनती है। माजी के गुनाहों, खताओं, लग्जिशों, लर्जिशों के नतीजे में पैदा होने वाली ना उम्मीदी और मायूसी जंजीर बन जाती है कि ये नौजवान मुस्तकबिल की जानिब कदम ना बढ़ाए। लिहाजा एक माजी की शिकस्त और नाकामी का खौफ, मायूसी, और दूसरा एक और जो नौजवान को लाहौत मुस्तकबिल का खौफ क्या होगा। पढ़ लिख के जाऊंगा तो जॉब कहाँ मिलेगी, शादी कहाँ होगी, घर कहाँ बनेगा, ये जो खौफ है ना, फिक्र करना अच्छी चीज़ है, कोई मसला नहीं है, फिक्र करें, प्लानिंग करें, मनसूबाबंदी करें, काम करें। इसलिए कहा कि ज़िंदगी में ऐसे रहो जैसे 100 साल रहना है, ऐसी मनसूबाबंदी, लेकिन तैयार ऐसे रहो कि अभी मौत का बुलावा आ जाए फौरन लब्बैक या अल्लाह, ये नारा तो बहुत अच्छे तेरी राह में लड़ेंगे या अल्लाह, लेकिन इसको अमली सूरत में अमली जमा पहनाना मुश्किल है। मनसूबा 100 साल का बनाओ लेकिन तैयार ऐसे रहो कि अभी मर जाना है। लिहाजा माजी की शिकस्त और नाकामी की मायूसी और नाउम्मीदी एक ये बीमारी, ये इस बात का सबब बनती है कि मुस्तकबिल में जो कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं आप उससे हाथ धो बैठें, उसका खौफ, अनजाना खौफ जो है वो आपके लिए जहर कातिल है। ये दोनों सिफात नहीं होनी चाहिए। इंसान माजी से इबरत ले, गुनाहों से तौबा करे, खताओं का इजाला करे, शिकस्त के असबाब को समझे कि कहाँ गलती की, कैसे गलती की, कब गलती की, वजह क्या थी, इल्लत क्या थी, कॉज क्या था उस शिकस्त का, और फिर उसको आइंदा ज़माने में तकरार ना करने का अज़्म करे। ये जो कहते हैं ना मुसम्मम इरादा की, ये मुसम्मम का क्या मतलब होता है? मुसम्मम का मतलब ये होता है कि असम, असम कहते हैं बहरे को, यानी आप इतना मजबूत इरादा करें कि जब शैतान आपको बहकाने आए तो आप कहें कि जनाब मैं सुन नहीं सकता। अक्सर होता है आपको मुसम्मम इरादा कर लेते हैं, अक्सर तो यार नहीं जो नहीं मैंने तो जाना है जनाब, छट दे यार मैंने तो जाना ही है, ठीक है बकौल आपके दोस्तों के, हाँ जी क्या होता है इंसान रोकते हैं लेकिन नहीं रुकता। मुसम्मम इरादा यानी शैतान के मुकाबले में बहरे बन जाओ, नहीं सुनाई दे रहा सॉरी मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरा इरादा मुस्तहकम है, ये मुसम्मम इरादा है। लिहाजा माजी की मायूसी, माजी की शिकस्त की नाउम्मीदी इसको कम करें और मुस्तकबिल का जो खौफ छाया उसे कम करें, फिर जाकर आप रोशन मुस्तकबिल को देख सकते हैं। जिस तरह हम धुंध में गर्द व खाक में 2 मीटर से ज़्यादा नहीं देख सकते, इसी तरह माजी की मायूसी और शिकस्त की धुंध और मुस्तकबिल या कहूँ धुंधले मुस्तकबिल का खौफ शाहराए ज़िंदगी पर आपको बहुत ज़्यादा चलने नहीं देगा। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने उफक को रोशन करें। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सिफत जो जवान में ज़रूरी है और होनी चाहिए वो है सियासी फहम शऊर। सियासी फहम शऊर सियासी होने से अलग एक चीज़ है, जिसको इमाम खामनई ने कहा है कि मैं नौजवान तालिबे इल्मों में सियासी शऊर देखना चाहता हूँ कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है, बैरून मुल्क क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। ये तजज़िया करने की सलाहियत, ये एनालाइज करने की सलाहियत जवान में होनी चाहिए। तजजिया किसे कहते हैं? जुज़ जुज़ करना, अलग अलग करना। एक सानिया है, एक वाक़िया हुआ है, एक हादसा रोनुमा हुआ है बैनुल अक़वामी सतह पर या नेशनल आपके पाकिस्तान की सियासत में, आप तजजिया करें, जुज़ जुज़ करें कि ये कहाँ से, ये कहाँ से, ये कहाँ से, ये कहाँ से। इस बिना पर ये एनालाइज करने की सलाहियत आप में आनी चाहिए। रहबर कहते हैं ये फहम व शऊर आप में आना चाहिए ताकि आप धोखा न खाएं। ये अगर सलाहियत आ जाए, अफसोस कि हमारे यहाँ ऐसी कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है या कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ पर नौजवानों की फहम, सियासी को, शऊर और बेदारी को जो है बढ़ाया जाए। लेकिन बहरहाल ये चीज़ होनी चाहिए। इंसान एनालाइज से, तजिए से, बातचीत से, गुफ्तगू से, टेबल टॉक से, मुख्तलिफ चीज़ों से मुख्तलिफ चीज़ों को हासिल कर सकता है। सही तजिया, सही एनालाइज। दूसरी एक और चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है कि हम हिजरत कर जाते हैं, जिसको खुद रहबर मुअज़्ज़म ने भी नोट किया है, उसको बयान किया है। कहा कि मैं एक चीज़ के लिए इजाज़त देता हूँ कि आप हिजरत करें, वो ये है कि आप जाएं और वहाँ से आला तालीम हासिल करके आएं और अपने मुल्क की इल्मी तरक्की का बायस बने। और इसमें सवाल जवाब की गुंजाइश है कि पाकिस्तान जैसे हालात में हम क्या करें, मुहाजरत कर जाएं, हिजरत कर जाएं, मुल्क को छोड़ दें या यहीं रहें। बहरहाल ये इसमें डिटेल है, तफसील है, और मुमकिन है कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हों। आखिर एक चीज़ कि जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि जब हम मुल्क की सियासत में तशय्यो के किरदार को देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ तंजीमें, सेटअप, निज़ाम, गिरोह, जमातें और अफराद नज़र आते हैं। बाज़ अक़ात इनकी आपस की चपकलिश, इनका बाहिमी नज़ा, इनका बाहिमी इख्तलाफ तंजीमों का, जमातों का, शख्सियात का, इदारों का, इंस्टीट्यूशंस का, इस बात का सबब बनता है कि नौजवान बददिल हो जाए, घर में बैठ जाए। ये बड़ा एक अहम मसला है। हम सियासी तौर पर ला ताल्लुक़ नहीं रह सकते। हैं ऐसे गोशा किनार से आवाज़ें आती हैं कि जनाब तंजीम नहीं होनी चाहिए, इमामुकमैनी का हवाला दिया जाता है, रहबर मौज़म का हवाला दिया जाता है। लेकिन बहुत जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि ना नफी मुतलक की गई है तंजीम के वजूद से कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हमारे कानों में आवाजें आ रही हैं कि जनाब तंजीम नहीं होनी चाहिए, इमाम ने कभी तंजीम का नहीं कहा, रहबर ने कभी तंजीम की हिमायत नहीं की। कुछ लोग हैं नहीं, वो तंजीम के इतने हामी होते हैं कि उनके सारे दलाइल इस बिना पे होते हैं तंजीम होनी चाहिए, इमाम खुमैनी ने ये किया, इमाम खुमैनी ने वो किया, रहबर ने ये किया, कायदे शाह ने ये किया। लेकिन एक बात जो अजहर मीना शम्स है, जो बहुत जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं कि नफी मुतलक नहीं है कि तंजीम नहीं होनी चाहिए, इमाम ने मना किया और रहबर ने मना किया, नहीं, या बहुत ज्यादा 100% तायद क्यों नहीं, हर सूरत में होनी चाहिए ये भी नहीं, कुछ शराइत के साथ तंजीम का वजूद जरूरी है। ये तो अजहर मीना शम्स है। टीम वर्क, इंस्टीट्यूशनल और आइडियोलॉजिकल मूवमेंट करना एक ही फितरी अमर है। इंसान जो है वो टीम वर्क बनाकर चार लोग एक काम को अंजाम देते हैं। ये छोटी सी नशीत तो ये एक टीम वर्क हुआ है। एक ने कहा मैं कैमरा लाऊंगा, एक ने कहा मैं माइक लगाऊंगा, एक ने कहा मैं मौलाना को लेकर आऊंगा, एक ने कहा मैं इन्विटेशन दूंगा। ये टीम वर्क है। इसके लिए कहने का नहीं, इमाम खुमैनी ने इस टीम वर्क को मना किया, इस तंजीम को मना किया, इसके वजूद को मना किया, नहीं, 90% मना किया, 90% हिमायत की। कहा कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाना चाहिए, ये सिफात हैं तो तंजीम होनी चाहिए, इन सिफात की बना पर एक तंजीम, एक जमात, एक इंस्टीट्यूशन, एक इदारा, एक सेटअप, एक टीम वर्क कामयाब हो सकता है। ये चीज़ें टीम वर्क के लिए, जमात के लिए, तंजीम के लिए नुकसानदेह हैं और उसके लिए मौत का पैगाम साबित होती हैं। लिहाजा ये अफरात तफरीत जो हमें नज़र आ रही है कि नहीं होनी चाहिए, और आप देख रहे हैं कि शिद्दत से इस चीज़ को बयान करने वाले लोग हैं, बयान कर रहे हैं, तंजीम की मुखालफत, इंस्टीट्यूशन की मुखालफत, और फिर वो एक चीज़ रिप्लेस करते हैं। वो क्या करते हैं, तहरीक लेकर आते हैं, एक मूवमेंट लेकर आते हैं, एक बेदारी की मुहिम लेकर आते हैं। खूब वो भी तो एक तंजीम है। सही है कि उसमें उस तरीके से वो चीज़ें नहीं हैं कि जो दूसरी तंजीमों में ओहदे होते हैं, लेकिन बहरहाल हर इलाके का अपना सेटअप है, हर इलाके का अपना एक निज़ाम है, अपना इलाके का जो है वो तमाम मसाइल को देखने के लिए एक चैनल बनाया गया, ये उस तहरीक में मौजूद है, तो ये भी नज़र आता है। तो 100% हिमायत है, 100% मुखालफत है। अगर ये सिफात हैं तो बहुत अच्छा है, ये सिफात तंजीम में नहीं होनी चाहिए, ये सिफात तंजीम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो फितरी अम्र है, एक बहुत ही नेचुरल सा एक चीज है, वो नेचुरल सी चीज क्या है? वो नेचुरल सी चीज ये है कि इंसान टीम वर्क को पसंद करता है। टीम वर्क की सूरत में इंसान ज्यादा से ज्यादा नतीजा हासिल कर सकता है। एक तंजीम से, एक फेडरेशन से, एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक जमात से जो एक इलाके में फैली हुई हो, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट आपको हासिल हो सकती हैं। बहुत बड़े रकबे में आप एक कम अरसे में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आप यहां से चलना शुरू करेंगे जनाब को कि मैं तने तनहा लोगों को दावत दूंगा, ये कौन सा सेक्टर है? G9 के तमाम घरों में मैं बनफ्स नफी जाके दावत दूंगा, कितना वक्त लगेगा आपको? घर घर जाएंगे, लेकिन आप टीम वर्क बनाएं, जनाब मशरक आपका, मगरब आपका, शुमाल आपका, जुनूब मेरा, खत्म हो गए। ये टीम वर्क है, कामों की तकसीम, जिम्मेदारी की तकसीम, जिम्मेदारी की तकसीम, सलाहियत और स्किल्स और इस्तेदाद के लिहाज से एक नेचुरल अमर है। लिहाजा तंज, चूंकि इंसान सोशल एनिमल है, मिलजुल के जिंदगी बसर करता है, लिहाजा ये तंजीम साजी, ये वजूद, ये टीम वर्क उसकी जिंदगी में, उसकी नेचर में मौजूद है। अब इस दौरान हम क्या करें? ये जो रहबर ने गुफ्तगू की है, बज़ाहिर ये ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक गुफ्तगू है, यानी एक निज़ाम, एक टीम वर्क के लिए गुफ्तगू की गई है। ये किताब मेरे पास मौजूद है, मैं उसको आपका हवाला भी दूंगा, जहाँ जा रहा हूँ उसका हवाला दे रहा हूँ। नुक्ता हाय नाब यानी बुनियादी नुकात, नुक्ता हाय नाब यानी असली नुकात, यानी जानदार नुक्ते, इसका तर्जुमा ये। इसके आखिर में खुद रहबर मुअज़्ज़म का एक जुमला है बहुत प्यारा, जो हम सब की सूही फिक्रों को जगाने के लिए काफ़ी है। फरमाते हैं, दर सुखनरानी हाय माँ, हर्फ आई खूबी दरगोशों के नारस, मुंतहा गालिबन दिक्कत न मिशवद, व हामिन दौर गुम मिशवद। फरमाते हैं कि हमारी सुखनरानी में, हमारी गुफ्तगू में, हमारे बयानात के गोशों किनार में अच्छी बातें, अच्छे नुकात आपको मिल सकते हैं, मौजूद हैं। फ़र्क ये है कि नारे में रहबर के फरमान पे जान भी कुर्बान है, निज़ाम फलाकत जिंदाबाद, दुश्मन विलायत मुर्दाबाद, इसी हा हुई हाड़ा हुड़ी में, अफर तफरी में वो अच्छे नुकात गुम हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। ये रहबर के गिला है हमसे। आज जो कुछ भी हम हालात देख रहे हैं पाकिस्तान में तशय्यु के एतबार से, ये तमाम जमातों के लिए एक तज़क्कुर है कि वाकयन वली फकी के मानने वाले और इस तरह आपस में बाहम दस्तो गरेबाँ, अलमिया ये एक रहबर के, एक वली फकी के मानने वाले, इख्तलाफ रविश का, इख्तलाफ मेथड का, इख्तलाफ तरीक़े कार के एक फितरी चीज़ है, होना चाहिए। इसी किताब में रहबर ने कहा कि मैं ये नहीं कहता जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तालिब इल्मों की, या उससे बड़ी सतह पर जितने भी सेटअप्स काम कर रहे हैं, जितने भी टीम वर्क हैं, गिरोह हैं, सब एक हो जाएं, सब एक परचम तले आ जाएं, सबका एक लोगो होना चाहिए। कहा कि नहीं, शुदन शुदन न शुदन न शुदन, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, अगर हो सकते हैं तो हो जाए। उसके बाद भी रहबर कहते हैं कि अगर हो भी जाएं, सब एक हो जाएं, फिर कुछ ही अरसे में इनमें से कुछ अफराद अलग हो जाएंगे, इनमें से अलग हो जाएंगे। फितरी अमर है ये, रिजिश कहते हैं, रिजिश यानी झड़ना, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ रेजा रेजा होकर झड़ने लगता है, इनकलाब भी रेजा रेजा होकर झड़ने लगता है। अंजुमने, तंजीमें, इदारे, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें, इनमें रिजिश होती है, झड़ा होता है, कुछ अफराद निकलते हैं, कुछ अफराद आते हैं, कुछ अफराद जाते हैं, ये एक फितरी अमर है। اسلامی انقلاب آیا فوراً ہی گروہ فرقانی الگ ہو گیا، کون جو انقلاب لے کے آ رہے تھے مقبنی قیادت میں، انقلاب کے آتے ہی ایسے الگ ہوئے کہ علماء کی جان کے دشمن اور خون کے پیاسے ہو گئے. آیت اللہ مفتح، آیت اللہ شہید متحری کو کن سکتے گروہ فرقانی نے قتل کیا. یہ ریزش، یہ جھڑاؤ ہر تنظیم میں ہوتا. رہبر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب ایک بھی ہو جائے نا، پھر بھی ان میں جھڑاؤ کا عمل شروع ہو جائے گا، پھر کچھ لوگ الگ ہو جائیں گے. لہذا کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ 100% منطقی بات نہیں ہے کہ سب ایک ہو جائیں. اور ممکن ہے کہ ساری ٹرسٹ ایک ہو جائیں، ساری ماتمن انجمن ایک ہو جائیں، جلوس میں ایک علم نکلے، ممکن ہے، امکان وجودی ہے اس کا، لیکن پھر دوسرے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح تمام تنظیمیں اگر ہو بھی جائیں، کہہ رہے ہیں کہ ان میں جھڑاؤ کا اور ریزش کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اگر ہوئے ہوئے، نہیں ہوئے نہیں ہوئے، جو چیز ضروری ہے ان تمام تنظیموں کے لیے، جماعتوں کے لیے، گروہوں کے لیے، حزب کے لیے، فیڈریشن آرگنائزیشنز کے لیے، انسٹیٹیوشن کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں، طریقہ کار کے اختلاف کو نظریاتی اختلاف کا نام نہ دیں. ہمارا تو فلاں سے نظریاتی اختلاف ہے، نہیں، نظریاتی اختلاف الگ ہوتا ہے، یہ طریقہ کار کا اختلاف ہے کہ جس میں ہم دو چار ہیں، اور ہم اس کو نظریاتی اختلاف کہہ کے در حقیقت اپنے درمیان خلیج بنا لیتے ہیں، نہیں عزیزان گرامی. لہذا یہ کہنا کہ سب ایک ہو جائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے. الگ الگ رہیں اپنے اپنے طریقہ کار پر، ہاں جہاں تک ہو سکے آپس میں. اور یہ رہبر نے اس کو بھی بیان فرمایا، وہ آپ کو بتا دوں کہ تنظیموں کے وجود میں تین چیزیں ہونی چاہیے. اگر یہ تین چیزیں ہیں تو تنظیم بہت اچھی ہے. پہلی چیز یہ کہ وہ تربیت کا کام کرے، خصوصاً روحانی تربیت، یہ رہبر کے الفاظ ہیں، معنوی تربیت، روحانی تربیت، خدا پرستی کا خوف، حق پرستی کی فکر کو لوگوں میں، نوجوانوں میں، اپنے فالوورز میں، اپنے کارکنوں میں بیدار کرنا. دوسری چیز یہ کہ سیاسی طور پر ان کے فہم و فکر کو پالو بر دیں، پرورش کریں. اور تیسری یہ دیے کہ آپس میں متحد اگر نہیں ہو سکتے تو آپس میں مختلف بھی مت ہوں، اختلاف بھی نہ رکھیں. یہ نہیں ہو کہ یہ میری تنظیم وہ تمہاری تنظیم، یہ میرا جھنڈا وہ تمہارا جھنڈا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے ہم دوسرے کے سر پر اور امام میں پیر رکھ کے اپنا جھنڈا گاڑنے کے لیے نظر آ رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے، چوکنگ مٹانے پہ اختلاف ہوتا ہے، پوسٹر لگانے پہ اختلاف ہوتا ہے. پہلے اختلاف ہوتا تھا گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، پانی پلانے پہ جھگڑا، اب ہوتا ہے پوسٹر لگانے پہ جھگڑا، چوکنگ مٹانے پہ جھگڑا، نعرہ لگانے پہ جھگڑا. یوم القدس ہوگا تو میرا خطیب آخر میں خطاب کرے گا، وہ کہے گا میرا صدر آئے گا، وہ کہے گا میرا جنرل سیکرٹری آئے گا. ہر بار کہنے کا اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر نہ ہوں. تین چیزیں ہیں، روحانی تربیت، سیاسی تربیت، اور تنظیموں کا باہمی دوستانہ رابطہ، یہ ضروری ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر یہ تنظیم افادیت سے زیادہ، فائدے سے زیادہ نقصان دہ. لہذا اس جانبی توجہ رہے. آپ اپنی سیاسی تربیت کریں، سیاسی شعور پیدا کریں، پھر آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کے ساتھ شامل ہو. اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کچھ علماء جو ہیں وہ شاکی نظر آتے ہیں، شکایت کو نندہ نظر آتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں کہ جناب ہم سے الگ ہو گئے، اب دور جا کر اتحاد کی باتوں کا کیا مقصد ہے. خوب، یہ ایک ریزش کا عمل ہے، جھڑاؤ کا عمل ہے، کہ جب تحرک نہیں ہوتا، بیداری نہیں ہوتی، فرسٹریشن ہوتی ہے، تذبذب ہوتا ہے، اضطراب ہوتا ہے، کشمکش ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، اور پھر اجتماعی سطح پر، تشیع کی سطح پر، قائد شہید کے دور کے بعد کوئی ہلچل نظر نہ آئے، کوئی تحرک و بیداری نظر نہ آئے، کوئی موومنٹ نظر نہ آئے، تو پھر ایک فطری عمل کے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں. لہذا اس کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دینا کہ جناب آپ ہم سے الگ ہو گئے اور پھر ہم سے اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ پہلے ہمارے پاس آئیے، ہمارے ساتھ بیٹھیے یا ہمیں ملیے، پھر या वो मेरे स्टूडेंट हैं, वो मेरे शागिर्द हैं, मैं उस्ताद का दर्जा रखता हूँ, मेरे दर्जा, ये बातें बहुत छोटी हैं। कम से कम एक आलिम से कि जो अपने आप को नुमाइंदे वली फकी कहता है, जिसके नाम के साथ कायद मिल्लत जाफरिया का लकब लगाया जाता है, बहुत एहतराम से नाम ले रहा हूँ मैं, जिनको आयतुल्ला के लकब से मुलक्कब किया गया है, ये उसकी शायन शान बातें नहीं हैं कि अगर वाकई वो कायद मिल्लत जाफरिया हैं, अगर हैं, अगर वो नुमाइंदे वली फकी हैं कि हैं, 100% हैं, उनको ये बातें जेब नहीं देती कि वो ये कहें कि जनाब वो मेरे शागिर्द हैं, वो मुझसे अलग हो गए। खूब, ये एक फितरी अमर है कि जब काम नहीं होता, जब तहरुक नहीं होता, जब बेदारी नहीं होती, तो फिर इस तरह जो है वो सामने आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कौमी पॉलिसी पर मुत्तफिक ना हो, मुश्तरक नुकात मुत्तफिक ना हो। कुल तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, खुदा कह रहा है कि अहले किताब को बुलाओ, कॉमन पॉइंट्स पे जमा हो। मैंने बारहा कहा है, अगस्त में मैं मजलिस वहदत में था, अगस्त में मैंने इस्तीफा दिया, उसके बाद से मैंने कौमियात के मसले पर उलमा की तवज्जो को मंजूर कराना शुरू किया। मुझे फख्र है इस बात पर कि सबसे पहले कौमी मुफाहिमत के लिए, मुश्तरक कौमी प्लान के लिए मैंने आवाज बुलंद की, मैंने उलमा को मुतवज्जे किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस जानिब कदम बढ़ाया जा रहा है। लिहाजा इसको, इस कदम को और इस आवाज को ये कह के कि जनाब हम मिसाल के तौर पर ये हमारे शागिर्द हैं, ये हमसे जुदा हुए हैं, खूब अगर काम किया जाता, अगर तहरुक व बेदारी होती, तो फिर ये सूरत हाल ना होती। बहुत माजरत के साथ, बहसीत आलिम दीन, बहसीत नुमाइंदे वली फकीह, एहतराम है आगर साहब का, लेकिन इस वक्त कौम की आवाज़ है। इस मिल्लत को, इस तशय्यो को, इस मकतब को दो धड़ों में टूटने से बचाने के लिए उलामा का काम है कि बैठें। हम हिजबुल्लाह के कायदीन के साथ बैठ कर तस्वीर बनवा सकते हैं कि हम हिजबुल्लाह के नुमाइंदा हैं, हम कायदे शहीद के रूहानी फर्जंद हैं। बहुत अच्छा, जजाकल्ला, माशाल्लाह, आप मर्द मैदान हैं, आपने काम किया और बहुत सी मुश्किलों को खोला, उलझाओं को सुलझाओं में तब्दील किया, बंद राहों को खोला, गुशाइश पैदा की। दूसरी तरफ नज़र आते हैं कि हम कायदे मिल्लत जाफरियाँ हैं, हम आगा साजिद हैं, हम जो हैं वो मिसाल के तौर पर आगा आरिफ के और आगा मुफ्ती जाफर के वारिस हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब पाकिस्तान में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की फ़िज़ा है, उसके लिए आगा साजिद नकवी ने बहुत काम किया है। उनकी फहम फरासत थी कि उन्होंने दियोबंद उलमा के साथ बैठ के जो है वो एक ग्राउंड तैयार किया कि आज जो है बरेलवी और जो दियोबंदी हैं वो एक पेज पर शियों के साथ खड़े हैं। ये उनका काम है। अगर वो दियोबंदी उलमा के साथ बैठ सकते हैं तो क्या एक जो है वो मिसाल के तौर पर हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह के साथ बैठ सकता है तो क्या आपस में नहीं बैठ सकते? क्या मुश्किल है इनके लिए? कोई मुजायका है? कोई कबाहत है? कोई मुश्किल है? कोई शरी मजबूरी है इन दोनों में? नहीं, बैठना चाहिए मुश्तरक कौमी नुकात के लिए, बैठना चाहिए ताकि ये तजब्जुब, ये इस्तराब, ये उलझाव, ये तनिश जो इस वक्त कौम में, नौजवानों में, ये दूर होनी चाहिए। सिर्फन दूसरे के वजूद की नफी करना कि नहीं दूसरा कोई है ही नहीं, हम हैं जो कुछ भी हैं, यह गलत है। एहतराम मुतकाबिल दूसरे के वजूद की नफी करें। वो जो नुकात मैंने कल बयान किए थे वो बयान करूं, उसके बाद जहमत को तमाम करूं। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दूसरों के वजूद की नफी ना करें, ये नहीं कहेंगे सिर्फ हम हैं, नहीं, दूसरे भी हैं, उनका अपना मेथड है, उनका अपना तरीक़ेकार है, उनकी अपनी राहो रवेश है। एहतराम मुतकाबिल, आज हम देखते हैं बाज़ औक़ात निचली सतह पर, ऊपरी सतह पर उलमा की इज्जत का ख्याल नहीं रखा जाता। अपने आप को हक साबित करने के लिए दूसरों को, हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि दूसरों को बातिल करार दें, बातिल सबूत, बातिल होने के लिए सबूत पेश करें। ये इंतहाई गलीज अमल है, इंतहाई गैर महज़ब अमल है ये। लिहाजा दूसरों के वजूद की नफी ना करें, वो तस्लीम करें एहतराम मुतकाबिल, और फिर कॉमन पॉइंट्स पे जमा होने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे गिले शिकवे के वो शागिर्द हैं, हम सीनियर हैं, हम बुजुर्ग हैं, ये बातें मावरा हैं उलमा की शान से कि वो आए और बैठे हैं। और नहीं, ठीक है, आपका अपना दायरे कार है, आपके अपने फॉलोअर्स हैं, आपके अपने कारकुन है, आपका अपना सेटअप है, इनका अपना सेटअप है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल इस जानिब कदम उठना चाहिए, इस जानिब शुरुआत होनी चाहिए ताकि ये तजब्जुब, ताकि ये इस्तराब जो इस वक्त कौम में है, नौजवानों में, ये ख़त्म हो सके। इसके लिए सबसे बेहतरीन जिम्मेदारी यह है कि अपने अंदर फहम व शऊर, सियासी फहम व शऊर पैदा करें ताकि आप जिसको बेहतर समझते हैं उसके हाथ मजबूत करें। मैंने आईएसओ के दोस्तों को भी ये कहा कि आप पाबंद ना करें कि आप फलां के साथ या फलां के साथ या फलां के साथ, आपने तंजीम की नफी करनी है, आप तहरीक के साथ जाएं, नहीं, या आप जो हैं वो फलां के साथ जाएं, या एक्स के साथ या वाई के साथ या जेड किसी के साथ भी जाएं, नहीं, पाबंद है। आप सियासी बसीरत पैदा करें, वो जिसको बेहतर समझेगा चला जाएगा, वो समझता है तंजीम का वजूद ज़रूरी नहीं है, तहरीक होनी चाहिए, एक मुहिम होनी चाहिए, जाए। एक समझता है कि नहीं इस तरह होना चाहिए, इस तरह जाए। कोई समझता नहीं इस तरीके से काम होना चाहिए, इस तरीके से जाए। लेकिन लेकिन जितने भी टीम वर्क हैं, जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब की जिम्मेदारी है इस फिज़ा को कायम रखने के लिए मिलजुल कर, मुत्तहिद होकर, हम सदा होकर काम करें, तब जाकर ये ऊँट किसी करवट बैठ सकेगा। ये कुछ बातें थीं, ये दर्द दिल थे कि जो आप नौजवानों से करना चाहता था, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको अपनी जवानी की कदर करने और हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगी की कदर करके इसको रज़ा इलाही के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
दोस्तान गुफ्तगू से मुतलिक सवाल तो आप कर सकते हैं।
हाँ साहब, आपने कुछ जहद का सवाल किया, जहद का एक उठाया था कि फिक्र दुरुस्त हो, लेकिन साथ ये कि जब तक इंसान की जहद ठीक ना हो जवान की, तो उस वक्त तो अपनी सलाहियतों को नहीं, लेकिन हकीकी और सही जहद का जवान को कैसे पता लगे कि ये बाकी ये गलत जहद है, ये दुरुस्त रास्ता है, ये सही रास्ता है।
सवाल यह है कि जहद का तायुन किस तरह किया जाए कि यह सही जहद है या गलत जहद है। बहुत अच्छा सवाल है और जाहिर सी बात है इसके लिए फिर हमें मकतब वही की तरफ लौटना होगा, क्योंकि इंसान जिस कारखाने से बना है वही उसकी हिदायत के सही इंतज़ाम कर सकता है। तो मकतब वही में सलाहियत है कि वो इंसान की सलाहियतों को परवान चढ़ाने, उसकी जहद और उसकी डायरेक्शन का तायुन करने में उसकी मदद करे। और ये मदद करना हाथ पकड़ के नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक बेदार सिफत पैदा करनी है कि वो ख़ुद अमल करे। इस्लाम ये नहीं चाहता कि हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती आपको मस्जिद तक ले आए, नहीं, इस्लाम कहता है आज़ाद छोड़ देता है, आइडियोलॉजी देता है, फ़िक्र देता है, दरीचे रोशन करता है, फिर कहता है ये आपकी मर्ज़ी, आप आए ला इकरा फिद्दीन या उधर चले जाएँ। इस बिना पर अगर इंसान वाकईन यानी क़ुरान और अहले बैत के दामन से वाबस्ता हो, क़ुरान का सही मुतालिया हो, अहादीस का मुतालिया हो, और रोशन फ़िक्र, राशन फ़िक्र नहीं, रोशन फ़िक्र उलमा से वाबस्ता हो, तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी डायरेक्शन को पा सकता है। एक और काम जो जिसकी कमी बहुत शिद्दत से इस ज़माने महसूस की जा रही है, गुज़िश्ता कोई 8-10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ काउंसलिंग का, यूथ के लिए मुशावरे का, ये ज़रूरी है कि हम दीनी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी दोनों मैदानों में नौजवानों की रहनुमाई का और मुशावरे का इंतज़ाम करें ताकि उनके अंदर जो सलाहियतें हैं उनको सही डायरेक्शन दी जा सके। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।